ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 12 जनवरी 2020 के लिए है। विषय धर्मविधि। स्वर्णपत्र शमूल। क्या भगवान हुमा बलियों और मेला बलियों से उतना प्रसन्न है जैसा कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है? जब वो सुनकर विश्वास करते हैं तो ये चढ़ावे चढ़ाने और मेंढों की चर्बी से उत्तम है। उत्तरदायी अध्ययन यर्मिया। सेनाओं का यहोवा जो इसराइल का परमेश्वर है यूं कहता है, क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाला, उस समय मैंने उनको हुमा बलि और मेला बलि के विषय में कुछ आज्ञा नहीं दी थी, परंतु मैंने तो उन्हें ये आज्ञा दी थी कि मेरा वचन मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। पर उन्होंने मेरी ना सुनी और मेरी बातों पर कान ना लगाया, वो अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हाथ पर चलते रहे और पीछे हट गए पर आगे ना बढ़े। इस वचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जो इस वचा के वचन ना माने, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय ये कहकर बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञा मैं तुमको देता हूँ उन सभी का पालन करो, इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। पाठ उपदेश बाइबल में से निर्गमन। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इसराइलियों को मेरा ये वचन सुना कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या क्या किया है, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए यदि निश्चय तुम मेरी मानोगे और मेरी वचा का पालन करोगे तो सब लोगों में तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों के राजा और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इसराइलियों से कहनी है वो यही है। व्यवस्था विवरण। सो आज जान ले और अपने मन में ये जान भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं, और तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए होंगे। मरकस। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। और वो कुफरनहूम में आए और वो तुरंत सब्बत के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वो उन्हें शास्त्रियों के नियम नहीं परंतु अधिकारी के नियम उपदेश देता था। और उसी समय उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करके आपस में वाद विवाद करने लगे कि ये क्या बात है, ये तो कोई नया उपदेश है, वो अधिकार के साथ अशुद्ध आत्मा को भी आज्ञा देता है और वो उसकी आज्ञा मानती हैं। यूहन्ना। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरुण इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मरकस। 2 दिन के बाद फसा और खमीरी रोटी का पर्व होने वाला था और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे क्यों कर छल से पकड़कर मार डाले, और चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। जब सांझ हुई तो वो 12 के साथ आया और जब वो खा ही रहे थे तो उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा लो ये मेरा देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया और उसने उनसे कहा ये वचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए भाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊं। यूहन्ना। इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और वो अपनी सूली उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगता। वहां उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। यूहन्ना। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और ये तीसरी बार है कि यीशु ने मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिया। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा हे शमौन यूहन्ना के पुत्र क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है। उसने उसको कहा हाँ प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उसको कहा मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उसको कहा हे शमौन यूहन्ना के पुत्र क्या तू मुझसे प्रेम रखता है। उसने उससे कहा हाँ प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उसको कहा हे शमौन के पुत्र क्या तू मुझसे प्रेम रखता है। पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार उसको ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है और उससे कहा हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है तुझे जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा मेरी भेड़ों को चरा। रोमियो। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के नियम सौंप देते हो उसी के दास हो और जिसकी मानते हो चाहे पाप की जिसका अंत मृत्यु है चाहे आज्ञा मानने की जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए हो और पाप से छुड़ाए जाकर धाम के दास हो गए। ग्रंथियों। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर घाड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के समर्थी हैं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। भगवान मनुष्य सहित ब्रह्मांड का निर्माण और संचालन करता है। ब्रह्मांड आध्यात्मिक विचारों से भरा है जिसे वो विकसित करता है और वो मन का आज्ञाकारी है जो उन्हें बनाता है। दिव्य मन सही ढंग से मनुष्य की संपूर्ण आज्ञाकारिता स्नेह और शक्ति की मांग करता है। किसी भी कामनिष्ठा के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जाता है। सत्य का पालन मनुष्य को शक्ति और सामर्थ्य देता है। त्रुटि के अधीन होने से शक्ति का नुकसान होता है। सत्य वास्तविक आध्यात्मिक कानून के साथ सभी बुराइयों और भावतिकवादी तरीकों को निकालता है। वो कानून जो अंधे को दृष्टि देता है, बहरे को सुनाता है, गूंगे को आवाज़ देता है, लंगड़े को पैर देता है। भगवान की अज्ञानता अब विश्वास के रास्ते का पत्थर नहीं है। आज्ञाकारिता की एकमात्र जमानत उसी की एक सही आशंका है, जिसे जानने के लिए जीवन अनंत है। भावतिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से हम उसे दिव्य मन, जीवन, सत्य और प्रेम के रूप में जानते हैं। जब हम ईश्वरी प्रकृति को समझ लेते हैं और उसी रूप से प्रेम करते हैं, तो हम उस अनुपात को स्वीकार करेंगे और उसका पालन करेंगे, जो कि नगरा पालका से अधिक नहीं, बल्कि हमारे ईश्वर के सानिध्य में आनंदित होगा। तब धाम हृदय का होगा, मस्तिष्क का नहीं। ईश्वर की मन की सरकार को सामग्री के तथाकथित कानून का समर्थन करना चाहिए। भावतिक कानून का पालन करने से आध्यात्मिक कानून का पूर्ण पालन होता है। वो कानून जो भावतिक स्थितियों पर काबू पाता है और सामग्री को मन के पैरों के नीचे रखता है। यीशु ने प्रदर्शन के द्वारा जीवन का मार्ग सिखाया कि हम ये समझ सकते हैं कि दिव्य सिद्धांत कैसे बीमारों को ठीक करता है, त्रुटि को जन्म देता है और मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। यीशु ने ईश्वर के आदर्श को किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में बेहतर प्रस्तुत किया, जिसकी उत्पत्ति कम आध्यात्मिक थी। परमेश्वर की आज्ञाकारिता के द्वारा उसने आध्यात्मिक रूप से सभी दूसरों के सिद्धांत का प्रदर्शन किया। उसके पालन की शक्ति ये थी कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यद्यपि पाप और बीमारी पर अपने नियंत्रण का प्रदर्शन किसी भी तरह से महान शिक्षक ने दूसरों को अपने स्वयं की पवित्रता के अपेक्षित प्रमाण देने से राहत नहीं दी, उसने उनके मार्गदर्शन के लिए काम किया ताकि वो उस शक्ति का प्रदर्शन कर सकें, जैसा कि उन्होंने ये किया और उसके दिव्य सिद्धांत को समझा। शिक्षक के प्रति विश्वास और सभी भावनात्मक प्रेम हम उस पर पूरा कर सकते हैं। कभी भी हमें उसका अनुकरण करने वाला नहीं बनाएंगे। हमें इस तरह से जाना चाहिए और ये करना चाहिए, अन्यथा हम उन महान आशीषों में सुधार नहीं कर रहे जो हमारे मालिक ने काम किए थे और हमारे लिए सभी अच्छे थे। मसीह की दिव्यता को यीशु की मानवीयता में प्रकट किया गया था। यीशु ने हमारी दुर्बलताओं को लिया। वो नश्वर विश्वास की त्रुटि जानता था और उसकी धारियों द्वारा, त्रुटि की अस्वीकृति द्वारा हम ठीक हो गए हैं। तुच्छ जाने जाते और मनुष्य का त्यागा हुआ होते हुए, शाप के बदले आशीर्वाद देते हुए, उसने नश्वर को खुद के विपरीत, यहां तक कि ईश्वर की प्रकृति को सिखाया। और जब त्रुटि ने सत्य की शक्ति को महसूस किया, तो महापुरुष ने स्लीप पर चढ़ाए जाने का इंतजार किया। फिर भी उसने ये नहीं कहा कि ईश्वरी आदेश का पालन करना और ईश्वर पर भरोसा रखना, ये जानते हुए भी पाप से पवित्रता के मार्ग को बदलता है और पीछे हटाता है। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। सच्ची भावना आध्यात्मिक रूप से खो जाती है अगर संस्कार रोटी और मैं के उपयोग तक ही सीमित हो। चेलों ने खाया था, फिर भी यीशु ने प्रार्थना की और उनको रोटी दी। ये शब्दिकता में एक मूर्खापूर्ण बात होती, लेकिन इसके आध्यात्मिक संकेत में ये प्राकृतिक और सुंदर बात थी। यीशु ने प्रार्थना की, वो आध्यात्मिक विचारों के साथ अपने दिल को ताज़ा करने के लिए भावतिक इंद्रियों से पीछे हट गया। फसा जो यीशु ने क्रूस पर चढ़ने से पहले रात को निशान के महीने में अपने शिष्यों के साथ खाई थी, वो एक दुखद अवसर था। दिन के अंत में लिया गया एक उदास भोजन, जब छाया के साथ एक शानदार भविष्य धुंधलेपन में तेजी से गिर रहा था, और इस भोजन ने हमेशा के लिए यीशु के कर्मकांड या रियाजतों को समाप्त कर दिया। सबसे पहले मसीह कर्तव्यों की सूची में ये है कि उसने अपने अनुयायियों को सत्य और प्रेम के उपचार की शक्ति सिखाई। उसने मर्त समारोहों के लिए कोई महत्व नहीं दिया। ये जीवित मसीह है, व्यावहारिक सत्य है, जो यीशु को उन सभी लोगों के लिए पुनर्उत्थान और जीवन बनाता है जो उस लेख में पालन करते हैं। उसके कीमती उपदेशों का पालन करते हुए उसके प्रदर्शन के बाद अब तक हम उसे स्वीकार करते हैं। हम उसके प्याले को पीते हैं, हम उसकी रोटी में हिस्सा बनते हैं, उसकी पवित्रता से बपतिस्मा लेते हैं और अंत में हम मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले दिव्य सिद्धांत की पूरी समझ में उसके साथ बैठेंगे। हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु के साथ वर्तमान होना केवल भावनात्मक प्रामाणिक या विश्वास नहीं है, बल्कि वास्तविक प्रदर्शन और जीवन की समझ है, जैसा कि क्रिश्चियन साइंस में सामने आया है। प्रभु के साथ होना ईश्वर के कानून का पालन करना है, परमात्मा द्वारा पूर्ण रूप से शासित होना, आत्मा द्वारा ना कि पदार्थ द्वारा। मसीही वैज्ञानिक का विज्ञान ईश्वरी कानून को दर्शाता है, इस प्रकार ये स्वयं के लिए कानून बन जाता है। वो किसी आदमी को हिंसा नहीं कराता, ना ही वो झूठा अभियुक्त है। क्रिश्चियन साइंसदान बुद्धिमानी से अपने पाठ्यक्रम को आकार देते हैं और ईश्वरी मन की अग्रणी का अनुसरण करने में ईमानदार और सुसंगत हैं। उसे जीवित रहने के साथ साथ उपचार और शिक्षा के माध्यम से साबित करना होगा कि मसीह का मार्ग एकमात्र ऐसा है जिसके द्वारा नश्वर लोगों को पाप और बीमारी से बचाया जाता है। अगर कभी संस्कार का हिस्सा बनाने वाले सभी लोगों ने यीशु की पीड़ाओं को याद किया और उसके प्याले को पिया तो उन्होंने दुनिया में क्रांति ला दी। यदि सभी जो भावतिक प्रतीकों के माध्यम से अपने स्मरण वास्तव की तलाश करते हैं तो सलीब उठाएंगे, बीमारों को ठीक करेंगे, बुराइयों को बाहर निकालेंगे और गरीबों को मसीह या सत्य का उपदेश देंगे, ग्रहणशील विचार वो सहस्त्राब्दी में लाएंगे। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सजाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।